أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری براہین اس بات خدا میں چل رہی تھی، اس میں برہان وجودی و برہان امکان و وجوب، برہان صدیقین، یہ تمام ہو گئے. آج ہم جس برہان کے بارے میں بات کریں گے وہ برہان نظم ہے. برہان نظم قدیمی ترین براہین میں سے ہے، یعنی حتیٰ سقراط و افلاطون کے کلام میں بھی محققین فرماتے ہیں کہ عبارات موجود ہیں کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے برہان نظم سے خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے. اور برہان نظم ایک اعتبار سے مہم ترین اس لیے بھی ہے کہ یہ عام فہم، سادہ اور عوام پسند ہے. یعنی آپ کسی بھی سادہ سے سادہ آدمی کے جو جاہل ہو، کسی سکول میں نہ بھی پڑھا ہوا ہو، اس برہان سے اگر استفادہ کر کے خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ راحت اور آسانی سے سمجھ جائے گا. اور برہان نظم اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے مہم ہے کیونکہ متون دینیہ میں بھی بہت زیادہ استفادہ ہوا ہے اس برہان سے. مثلا قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو بھرا پڑا ہے اس برہان سے، یعنی برہان کی شکل میں تو نہیں ہے، یعنی یوں کوئی سوء تفاہم نہ ہوگے سورہ کبرا اور جس طرح ہم بیاناتے ہیں ایسے نہ، اس میں ایسے مطالب موجود ہیں کہ انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے اس برہان نظم کو. مثلا قرآن کے اندر آیا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خدا نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور پھر اس کو اندازہ گیری کیا، اس کو منظم کیا ہے، اس کو مقدر کیا ہے. اسی طریقے سے ان نفی فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور اسی طریقے سے دیکھیں باقی خدا نے خود تفکر کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے انسان کو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی الجبال کیف رفعت، یعنی خود مطالعہ کائنات کا کہہ رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے اور پھر اس میں تدبر دینے کی ترغیب دے رہا ہے. کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر آیات ہیں مومنین کے لیے. کس چیز کی آیات ہیں؟ کیونکہ خدا تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ یہ عالم پورے کا پورا آیت خدا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر ذرہ کائنات کا خدا تک پہنچاتا ہے. مثلا کہ آپ روایات کی طرف چلے جائیں تو اس میں بھی بہت سارے آپ کو روایات مل جائیں گے کہ جس کے اندر برہان نظم سے استفادہ کیا گیا ہے. نحج البلاغہ کی ہے، خطبے کو انہوں نے نقل کیا ہے. بہرحال مہم ترین یعنی برہان میں سے ہے. اور چونکہ سادہ بھی ہے اور عوام کے فہم کے مطابق ہے، اس اعتبار سے بھی مہم ترین ہے، لہذا انسان جتنا اس کے اوپر کام کرے کم ہے. برہان کیسے، برہان کیا ہے؟ برہان اس کا اسی طرح جیسا پہلے ہم نے تشکیل دیا تھا آسان ہے. صغرا اس کا کیا بنے گا؟ کہ عالم منظم ہے. کبرا کیا ہے یا صغرا عالم منظم ہے؟ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ عالم نظم رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز کے جو نظم رکھتی ہو اس کا ناظم بھی ہوتا ہے. یعنی بدون ناظم نہیں ہو سکتا، ہر چیز جو منظم ہو وہ حتما ناظم رکھتی ہے. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ कि ये आलम जो कि नाज़म रखता है हतमन इसका भी नाज़म है। ये पुराने नाज़म है, इस तरीके से बयान किया जाता है इसको। मुख्तलिफ तकारीर हैं, आप मतलब बड़ी किताबों में जब जाएंगे, मतलब इलाहियात जो आगा सुबहानी की है, खुसूसन चार जिल्दी जो है, उसमें आप देखेंगे तीन चार तरीकों से बुरहान नाज़म को बयान किया है, यानी अलग अलग उसके सुगरा कुबरा बनाकर एक मुख्तलिफ जावियों से इस बुरहान को तकरीर किया वहाँ। बहरहाल हम इसी बुरहान को, इसी तकरीर को मद्देनजर रखते हैं। जब बुरहान वाज़े हो गया, फ़कत एक तज़क्कुर के उन्वान से खुद नाज़म किसे कहते हैं इसकी तारीफ बयान हो जाए, ताकि मतलब वाज़े हो जाए कि नाज़म किसे कहते हैं। नाज़म मुख्तलिफ अज़ा का एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिलना कि वो एक हदफ मुअय्यन तक पहुंचाए, इस किस्म के मजमूए को क्या कहेंगे कि ये नज़्म रखता है। बात होगी? मसलन आप देखते हैं घड़ी की तरफ, इस घड़ी के मुख्तलिफ क्या हैं, अज्जा हैं, इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ रखा गया है कि ये जिस तरीके से इनको रखा गया है वही तरीका मुझे बनता है कि ये घड़ी एक खास हदफ तक पहुंचाए इंसान को। यानी इसका जो हदफ है कि जो इसका टाइम मुशख्खस करना है, ये घड़ी कब अपना वो हदफ दे सकेगी कि जब ये एक खास क्या है मजमूए के अंदर, एक खास सूरत के अंदर इनको आपस में जमा किया जाएगा। अगर ये मजमूआ जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया गया, अगर ये हटा दिया जाए तो ये अपना हदफ अदा नहीं कर सकेगी। इसी तरीके से आप बाकी मिसालों में, गाड़ी की मिसाल ले लें, मोबाइल की मिसाल ले लें, कताआत मुख्तलिफ एक मुमकिन है, कताआत जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका जब आपस में वो जो नाज़्म बरकरार करना होता है, इकट्ठा इनको जमा करना होता है, एक ख़ास किस्म में जब उसको रखेंगे तो वो क्या है, एक नाज़्म की शक्ल में ज़ाहिर होगा। बस नाज़्म किसे कहते हैं कि अज़ाए मुख्तलिफा का एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिलाना या मिलना कि वो एक ख़ास हदफ की तरफ रहनुमाई करे या एक ख़ास हदफ की तरफ लेकर जाए, उसको कहेंगे कि ये नाज़्म रखता है, नाज़्म इसको आकर बयान करेंगे। बस जब ये तारीफ बयान होगी, अब नाज़्म की तीन किस्में बनती हैं, क्योंकि किताब में इसकी तरफ इशारा मौजूद है, बयान कर रहा हूं इसको। नाज़्म ज़ीबा शनाख्ती, क्या मुराद है इससे, यानी आप मुख्तलिफ अज्जा को इस तरीके से एक दूसरे के साथ रखते हैं, इस तरीके से उनके दरमियान इर्तिबात बरकरार करते हैं कि जब आप उस मुख्तलिफ अज्जा के खास तरीके से मुर्तबित होने के मजमूए को जब देखते हैं तो लज्जत बख्श होता है वो। अब ये नाज़्म मौजूद है लेकिन लज्जत बख्श है। मसलन अगर कोई नक्काशी करता है एक ताबलो के ऊपर, वो क्या करता है, मुख्तलिफ अज्जा को इस तरीके से आपस में पैवंद देता है, इर्तिबात बरकरार करता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखता है इस अंदाज में कि जब वो कामिल हो जाता है तो उसको देखने से इंसान लज्जत महसूस करता है। तो यहां भी एक नज़्म मौजूद है, लेकिन कौन सा नज़्म है, नज़्म ज़ीबा शनाख्ती। दूसरी किस्म जो नज़्म के, नज़्म इल्ली, इल्लतु मालूल यानी नज़्म इल्ली। नज़्म इल्ली क्या है, मसलन आप देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज के साथ मुर्तबित है, मसलन वालदैन होंगे तो फर्जंद होगा, बनना होगा तो अमारत मिलेगी। इस किस्म के जो आप इर्तेबात देखते हैं, मसलन आग होगी तो हरारत नजर आएगी या हरारत महसूस होगी, ठीक है। ये जो आप तकारुन देखते हैं इन चीजों के अंदर, ये जो इर्तेबात इस किस्म का मौजूद होता है, इसको कहते हैं ये नज्म रखते हैं। कौन सा नज्म? नज्म इल्ली रखते हैं, यानी इल्लत और मालूल आपस में, नज्म इल्ली के साथ आपस में मुर्तबित हैं ये। तीसरी किस्म जो है वो नज्म गाई है। नज्म गाई क्या है? यानी एक ऐसा मजमूआ कि जिसको इकट्ठा, इसके अज्जा को इकट्ठा किस लिए किया गया? ताकि खास हदफ तक लेकर जाए, एक मुशख्खस नतीजा जिससे मिले, इस किस्म के नज्म को कहेंगे कि नज्म गाई रखता है। मसलन जितने भी मौजूदात जिंदा हैं, अगर हर एक की तरफ आप निगाह करें तो इसके अंदर भी एक नज्म मौजूद है। इस नज्म को कहते हैं नज्म गाई। क्यों? इस वजह से कि इसके अंदर जो नज्म मौजूद है, हम एक नतीजा मुशख्खस व बाआज़िश इससे हासिल करते हैं। वो क्या है? मसलन खुदा तक पहुंचना है, या इसके अलावा मुख्तलिफ और भी आप लेकर आ सकते हैं। बस ये तीन किस्म के नज्म हमारे सामने जाहिर होते हैं। नज्म की तारीफ करने के बाद नज्म ज़ीबा शनाख्ती, नज्म इल्ली व नज्म क्या है, गाई हो जाएगा। ये नज्म की तीन किस्में क्यों बयान की हैं? क्योंकि बाज इश्कालात जो जिक्र होते हैं इसके ऊपर, बुरहाने नज्म के ऊपर, अगर ये नज्म की तीन किस्में जहन के अंदर हों तो उन इश्कालात का राहत इंसान जवाब दे सकता है। बस नतीजा ये निकला कि मफहूमे नाज़म के अंदर के जो हमने तारीफ की है, उसमें हद अकल दो अंसुर लाजमी हैं। कौन से? पहला, इसके अंदर हमाहंगी मौजूद होनी चाहिए, इसके दरमियान क्या इर्तेबात है, इर्तेबात मौजूद होना चाहिए, पैवंद आपस में होना चाहिए अज्जा का। अगर अज्जा बेदूने इर्तेबात मौजूद होंगे तो नाज़म बरकरार नहीं हो सकता वहां पर। हतमन क्या होना चाहिए? इनके दरमियान इर्तेबात कायम होना चाहिए, इनके आपस में एक दूसरे के साथ मुर्तबित होना चाहिए उनको, तब जाकर नज्म की सूरत इख्तियार करेंगे। अगर आपस में किसी किस्म का इर्तेबात ही ना रखते हो तो उनके दरमियान नज्म बरकरार नहीं हो सकता। बस एक चीज जो मुहिम है कि नज्म बरकरार हो, वो ये कि अज्जाए मुख्तलिफा के दरमियान हमाहंगी मौजूद हो। दूसरा क्या है? हदफमंदी भी हो उसके अंदर। अगर अज्जा को आप मुख्तलिफा को आपस में मिलाएं और उनके अंदर हमाहंगी भी मौजूद हो, लेकिन किसी खास हदफ तक ना पहुंचाते हो, हदफ ना रखते हो, तो उसके ऊपर नज्म की तारीफ सिदक नहीं करे। बस हदफ होना भी जरूरी है, पर हमाहंगी व हदफ नज्म के अंदर होना जरूरी है। मफहूम नज्म किस पर सिद्ध करेगा? जिसमें हद अकल ये दो मफहूम मौजूद होने चाहिए। जब हमने ये बुरहान सुगरा कुबरा और नतीजा उसका लिया है, इसकी खसूसियत क्या है बुरहान की? बुरहान नाज़म की वो ये है कि इसका जो सुगरा है वो करीब बे हिस्स है, यानी हिस्सी है तकरीबन, और जो हिस्सी चीज होती है वो आम फहम होती है। कैसे हिस्सी है? मसलन जब हमने कहा कि ये कायनात ये आलम नाज़्म रखता है, तो अपनी आंखों से देखा है तो कह रहे हैं, और आंखों से देखना उमूरे हिस्सिया में से है, यानी हमने पहले हिस किया है कि यहां नाज़्म मौजूद है, तो तब हम ये कह रहे हैं। बस इसका जो एक मुकदमा है वो हिस्सी है, जो खुबरा है इसका वो अकली है। कुबरा क्या था कि हार नाज्म नाजिम का मोहताज है। ये मुकदमा मुकदमा अकली है, क्यों? इस वजह से कि आपने इसको आंखों से नहीं देखा, बल्कि आपने क्या किया है, अकल से इसको दरियाफ्त किया। अकल ने हुक्म लगाया है कि जहां भी कहीं नाज्म नजर आ जाए तो समझो वहां क्या है, वो नाजिम का मोहताज है, वहां उसका नाजिम मौजूद है। अगर नाजिम मौजूद ना होता तो ये नज्म कभी बरकरार ना होता। बस एक खसूसियत और जो इसके अंदर पाई जाती है वो ये कि इसका एक मुकदमा वो हिस्सी है। एक और जो खसूसियत बुरहाने नज्म के अंदर मौजूद है वो ये है कि बुरहाने नज्म का ये जो सुगरा है जो कि हिस्सी है, इसको हासिल करने के लिए आपको तमाम कायनात का मुतालआ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने वजूद का भी मुतालआ कर लें, कायनात के एक गोशे के अंदर मौजूद या कायनात के अंदर एक जर्रे का भी आप मुतालआ कर लें, तो बुरहाने नज्म आप वहां पर इस्तेफादा कर सकते हैं। क्यों? इस वजह से कि हम नाज्म से नाजिम तक पहुंचना चाहते हैं। अब नाज्म चाहे जुजी तौर पर भी आपको नजर आ जाए तो बुरहान वहां पर सिद्ध करेगा। बस पूरे जहान का मुताला करने की जरूरत नहीं है। सुगरा आपका हासिल हो जाएगा उस वक्त भी कि जब आप जुजी तौर पर भी इस कायनात का मुताला कर लेंगे। ये था बुरहान नज्म और उसकी बाज खसूसियात। इसके ऊपर फिर इश्कालात बहुत ज्यादा हुए हैं। मतलब कांट इसको कबूल नहीं करता, डेविड ह्यूम इसको कबूल नहीं करता, जॉन हास्पर जो है इसको कबूल नहीं करता, हास्पर्स। वो सारे इश्कालात को किताब ने भी जिक्र नहीं किए, एक इश्काल एक दो इश्काल जिक्र किए हैं। हम भी इस किताब की तबीयत में फकत उसी इश्काल को ही मद्देनजर रख के उसका जवाब देंगे। इश्काल के आज क्या किया है, डेविड ह्यूम मतलब बुरहान नाज़्म के ऊपर चंद इश्काल कैसे होते हैं। मसलन एक इश्काल वो ये करते हैं कि आप जब कह रहे हैं कि ये कायनात नाज़्म रखती है, हम मसलन नाज़्म के मुनकिर हैं। क्यों? इस वजह से कि यहां पर क्या है, शुरूर मौजूद है, और शुरूर का मौजूद होना नाज़्म के साथ साजगार नहीं है। बस आपका पहला मुकदमा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, कि जब आपने कहा कि आलम क्या रखता है, नाज़्म रखता है, ये बंदा आगे मसलन इश्काल करता है। अब नहीं मालूम इस ये इश्काल करने वाला कौन है। वैसे काफी अरबी मुफक्किर हैं कि जो मुलहिद हैं वो ये इश्काल लेकर आते हैं दरम्यान में, कि चूंकि शुरूर मौजूद है इस कायनात के अंदर, और शुरूर वो चीज जो मुनज्जम हो, कभी शर नहीं रखती अपने अंदर। नहीं, डेविड ह्यूम नहीं है ये। शायद डेविड ह्यूम का हो भी सही, क्योंकि इबारत इन्होंने ऐसे जिक्र किया, मैंने इसके इबारात की तरफ तवज्जो भी नहीं की, बयान करता। देखता जाके डेविड ह्यूम ही है शायद इसका। बहरहाल मैं बाद में आपको बात करता हूँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, ये पूछा कौन सा है?
मैंने 6 और 4
छः और चार दरमियान है, चाहो मैं तो बता। 6 और 4 नहीं, हफ्ते तीर था, 6 और 4 दे दरमियान।
दफ्तर इस मेजबान का बोर्ड लगा।
6 4 बहरहाल ये ڈیوڈ ایوم کا اشکال ہوئے جس کا بھی میرے خیال میں عبارت سے ظاہر یہی ہو رہا ہے، ڈیوڈ ایوم کا ہے، شروع رکھتے نظم نہیں ہے، بس یہ صغرا ختم ہو جائے، اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے، فی الحال ابھی اس کا جواب نہیں دینا یہاں پر. دوسرا اشکال جو ہیوم یہاں پر کرتا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو یہ کبرا بنایا ہے کہ ہر نظم ناظم کا محتاج ہے، یہ کبرا کام نہیں ہے. آپ کبھی بھی نظم سے ناظم تک نہیں پہنچ سکتے، ممکن ہے تصادفی ہو، ممکن ہے اتفاقی ہو، اور ممکن ہے ایسا. مثلا ڈیوڈ ہیوم مثال دیتا ہے، ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اگر ایک کشتی ساز کے دیکھتے ہیں، ایک بہترین اور عالی ترین اور زیبا ترین کشتی اس نے بنائی ہے، تو آپ پہلی نگاہ میں یہ کہیں گے انتہائی ماہر کشتی ساز ہے یہ، یہی ذہن میں آتا ہے. لیکن کہتے ہیں جب آپ فرض کریں اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ، یہ ایسے ہی کشتی ساز اتنا مہم نہیں بن گیا. کیسے بنا ہے یہ اتنا مہم کشتی ساز؟ اس نے پہلے بہت سارے اشتباہات کیے تھے، غلطیاں کی تھی، آہستہ آہستہ اس نے اپنی اس غلطیوں اور اشتباہات اور اس جو اس کے اندر نقائص موجود تھے اس کو برطرف کرتا رہا. تو اب یہ کیا ہے، اس صورت میں جلوہ پیدا کیا ہے اس نے کہ ایک کشتی ساز ماہر بن گیا ہے. کہتے ہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کائنات اتنے منظم حالت میں موجود ہے، نظم موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے معلوم کہ یہ کائنات جو ہے وہ ایک ہی جہان ہے، اور ایک ہی جہان نظم کی صورت میں آ گیا نا. دہا ممکن ہے جہان گزرے ہوں کہ جس کے اندر یہ تجربہ چلتا رہا ہو، نقص موجود تھا، پھر اگلا نظام ہے، نقص موجود تھا، پھر اگلا، یہ آہستہ آہستہ ہے. اب یہ جو جس جہان میں ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ جہان اب وہ تمام نقائص کو چونکہ برطرف کر لیا گیا، تجربہ کر لیا گیا ہے، تو یہ اس صورت میں نظم کی صورت میں آ گیا ہے. اگر کیسے اگر آپ یہ ارتباط برقرار کرتے ہیں کہ جو نتیجہ آپ الہیون لینا چاہتے ہیں، یہ نتیجہ نہیں ہوتا. اس کا جواب انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے، مجھے تھوڑا جلدی آ جانا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.